वकुल, और कह दीजिए सुभान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर। अच्छा, जब इंसान कहता है ना मैं माफ कर देता हूँ, या इंसान कहता है कि मैं बुराई का बदला भलाई से दूँ, तो पता है क्या होता है, फौरन शैतान आ जाता है। शैतान आके कहता है लो अब तुम माफ कर दोगे, हद हो गई, इसने ऐसा किया, तुम्हारे साथ ये किया, तुम्हारे बच्चे के साथ ये किया, तुम्हें इतना सताया, भूल गई हो वो सारे वक्त। शैतान ऐसे इंसान को करता है ना। अगली आयत क्या है? आपको रब्बी आउज़ु बिका मिन हमज़ाति शय्यातीन। अल्लाह को पता है ना, अल्लाह यालम मन खलक, क्या उसको नहीं पता होगा जिसने पैदा किया। अल्लाह ताला फरमाता है आप कहें ए मेरे रब मैं तेरी पनाह चाहती हूँ, किससे? शैतान के कचोकों से। हम्ज कहते हैं कचोके को, ये कचोके लगाता है, पोक करता है इंसान को। जैसे पोक करते हैं ना, कोई बच्चे आपस में कभी कोई लकड़ी पकड़ी उस दूसरे को पोक कर रहे होते हैं, तो दूसरे कहता है आओ, आपके वो पहलू के अंदर इस तरह पोक करते हैं, इस तरह शैतान पोक करता है। फिजिकल भी एक पोकिंग होती है, और एक होती है इंसान को नफसियाती तौर पे कचोके लगाना, जहनी तौर पे कचोके लगाना। जो चीज आपको डिस्टर्ब करती है ना वो हम्ज है, इसीलिए वसवास को भी कहते हैं, ऐब लगाना भी इसका माना होता है। तो इसके हमजात से और मकरो फरेब भी, गीबत भी, ये सब चीजें इसमें आती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई है ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये तो एक है। फिर अबू दाऊद में जो है, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ही व नफ़थी, इसके हम्ज से, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं इसके हम्ज। तो इस तरह का तावुज हमें सिखाया कि जिससे शैतान की दुम को आग लग जाती है, उसको इतनी तकलीफ होती है जैसे उसको किसी ने फायर मार दिया, भागता है वो, और फिर जाकर कहीं उसको सुकून मिलता है, फिर वापस आता है। इसलिए नमाज में भी सूरह फातिहा से पहले ये वाला तावुज पढ़े, बड़ा जबरदस्त, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और उसकी तो खसलत है बार बार हमले करता है, फिर आ जाएगा, बार बार पढ़े, उसको ये पता चलेगा ना यहाँ से फायर होता है मुझे, तो फिर वो भाग ही जाएगा। और क्या होता है हम्स, तो मैंने आपको बताया। नफ क्या होता है? फूंक मारा। नफ नफ्स क्या होता है? जिस जिस फूंक पे थोड़ा सा थूक भी होता है ना, ऐसे करके जरा सी। तो क्योंकि शैतान के डिफरेंट तरीके हैं ना, कभी वो हम्स से आता है, कभी नफ से, कभी नफ से, कभी ऐसे फूंके मारता है, दिल पे थूथनी अपनी रख लेता है, पिक की तरह इसकी थूथनी होती, वो रख के तो फूंके मारता है दिल के ऊपर के वसवसे डाले। अल्लाह अकबर। तो इसकी कार्रवाइयों से, जितनी किस्म की भी इसकी कार्रवाइयां, सब के लिए ये दुआ सिखा दी कि अल्लाह इसकी हर कार्रवाई से मुझे महफूज रखना, इसकी जुइयों से, इसके वसवास से, इसके कचोकों से, इसके मकरो फरेब से, और चाहे वो शैतान जिन्नों में से हो या इंसानों में से हो। और देखिए कितनी प्यारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ जो सिखाई है ना, ये उसके अंदर सारी आ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, आऊदु बि कलिमातिल्लाहि तामाति मिन गदबी व इक्वाबी व शर्रि इबादी व मिन हमज़ाति शयातीन व अन यहदुरून। आगे आ रहा है ना, आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि ये मेरे पास हाजिर भी हो, क्योंकि ये तो जान ही नहीं छोड़ता ना इंसान की, हर वक्त आ जाता है, हर वक्त आ जाता है कि ये मेरे पास हाजिर हो। तो ये दुआ भी आप मांग सकते हैं, रब्बी आउज़ु बिका मिन हमज़ाति शैतीन व आउज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। ये भी दुआ मांग सकते हैं जो मसनून तिरमिज़ी की है, कि अल्लाह मैं तेरे कलिमात के साथ, मैं अल्लाह ताला की तमाम कलिमात के साथ, औज़ु बि कलिमात इल्लाही तामाती मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही, मैं उसके गजब से, उसके अजाब से, अल्लाह के अजाब से, उसके गजब से, और शरी इबादी और उसके बंदों के शर से। बंदों के भी तो कितने शर होते हैं ना, कभी आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, अब फलाना मेरे से हसद करता है, मैं कैसे बचूं, हाय फलां मुझे नजर ना लगा दे, हाय फलां की नजर बड़ी बुरी होती है, वो फलां जो है ना कोई जादू ना कर दे हमारे ऊपर, इतनी तरह के ख्यालात आते हैं। तो ये दुआ क्यों नहीं पढ़ लेते, मिन शर इबादी, हर एक लोगों के हर तरह के शर से आप नाम में आ जाएंगे अल्लाह के, और मिन हमजाति शैतीन, यहाँ रहून अल्लाह तला के, अल्लाह तला शैतानों के वसवसों से, हमजात से, और ये कि वो मेरे करीब आए, मैं अल्लाह के जो मुकम्मल कलिमात है उनकी पनाह में आती हूँ। और फिर देखिए मौत के वक्त तो ये हदीसे में पता चलता है इतने ज्यादा हमले करता है ना, बहुत ज्यादा फोर्सफुली आता है। तो उस वक्त की भी आप सर ने दुआ सिखा दी हमें, वैसे ये दुआ का हिस्सा है एक, ठीक है, ये एक आपको मसनून दुआओं में मिल जाएगी, ये मसनून दुआओं में से एक दुआ लंबी है उसका एक हिस्सा है। चलो आप इतनी ही पढ़ लिया करें, एक हिस्सा ही पढ़ें, आउज़ु बिल्लाही या आउज़ु बिका, आउज़ु बिल्लाही, वो तो क्योंकि लंबी दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका, यहां से पढ़ें अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका अन यतखब्बतनी शैतान इंद अल मौत, कि अल्लाह शैतान मरने के करीब मुझे उचक ले, अल्लाह ताला मैं इस चीज से तेरी पनाह में आती हूं कि ये ना हो कि वो उस वक्त मुझे फिसला दे, मुझे उचक ले। अल्लाह अकबर। देखिए ना अल्लाह ताला ने इलाज भी बता दी है ना, डरते क्यों है, इलाज भी आपके पास है, तो खौफ ज्यादा नहीं हो। ये दवाएं पड़े, ये हमारे लिए वेपन है, ये हमारे किले हैं, ये इतनी मजबूत है, हम इन इस किले में आ जाएंगे। जो अल्लाह की पनाह में आ गया उसको शैतान कहां से कुछ कर सकता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी दुआएं हैं, इनको याद कर लीजिए। हत्ता इजा जाए अहदहुमुल मौत, यहां तक कि जब आ जाए इनमें से एक को मौत। अब वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते, आपका मजाक उड़ाते, उनकी भी बात हो रही, और भी हर उस इंसान की जिसने कुफर किया या जिसने शिर्क किया या जिसने अल्लाह को भुला के जिंदगी गुजारी, जिसने गफलत में जिंदगी गुजारी, जिसने जिसको याद ही नहीं कि वापस जाना है, जिसने इस दुनिया के अंदर आखरत को बिल्कुल नजरों से ओझल रखा, तो फिर उसकी जिंदगी कैसी गुजरी? अभी मैंने आपको शुरू में बताया कैसी गुजरी, सिर्फ खाना पीना और यहीं के आराम, जिस्म की सारी राहतें और जिस्म की सारी ख्वाहिशात पूरी करना, बस उसमें गुजरी ना। तो फरमाया हत्ता इजा जा अहदहुमुल मौत, हत्ता के जब आ जाती है इनमें से किसी एक के पास मौत, या आ जाएगी मौत, काला रब्बे रजिउनी, तो वो कहता है मेरे रब मुझे वापस कर दे, ए अल्लाह मुझे वापस कर दे। अच्छा अब देखें आपके वो कह रहा है ए मेरे रब, इरजिउनी क्या है, वाहिद है कि जमा है, लौटा दे मुझको, ये तो जमा है, वाव नून है एंड में, मुझे ये ए मेरे रब मुझे लौटा दे, तो किसको कह रहा है ये? देखिए जब इंसान के ऊपर मौत आती है ना, मौत का वक्त आता है, तो वो पर्दा हट जाता है उसके आगे से, उसको सारा कुछ आगे नजर आ रहा है, उसको सब दुनिया जो अगली अगली दुनिया है ना वो उसके सामने, यहां से उसका कनेक्शन कटना शुरू हो जाता है और वहां से इस कनेक्शन जुड़ जाता है। अब ये क्या कह रहा है, एक नंबर वन इसकी ये वजह है जमा लाने की, कि ताजीम के लिए, जैसे आप किसी ताजीम करते हैं तो उसके लिए जमा का सीगा लाते हैं, आप कहते हैं ना, तो इस तरह के अल्लाह ताला के ताजीम के लिए वो कह रहा है। मुफस्सिरीन कहते हैं दूसरी वजह एक ये हो सकती है, दुआ तो अल्लाह से कर रहा है मगर कह रहा है अल्लाह ये फरिश्तों को कह मुझे छोड़ दे, फरिश्ते नजर आ रहे हैं ना मुझे लेने आ गए, अल्लाह मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। क्यों? तीसरी एक और वजह भी है कि ये तकरार के लिए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बार बार कह रहा है, जैसे कोई कहता है ना हेल्प हेल्प है मुझे बचा लो, है मुझे बचा, वो बार बार कहेगा इसलिए इर्जिअनी 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 बार बार कह रहा है, तो उसको कहा गया इर्जिउनी, ठीक है, उसको इससे जाहिर किया गया जमा से कि इतनी दफा वो रिपीटेडली कहता जा रहा है, क्या उसको मसला हो गया, क्यों कह रहा है? देखिए एक जगह पे आता है कि जब एक ऐसा इंसान जो मोमिन था ना, जो मोमिन था जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की याद में गुजारी और अपनी आखरत को सामने रख के गुजारी ना, जब उसको मौत के फरिश्ते लेने आते हैं ना, तो उससे पूछते हैं कि तुम चाहते हो कि फिर तुम्हें दुनिया में वापस कर दिया जाए, तो वो कहता है कि मैं उस गमों और तकलीफों की दुनिया में जाकर क्या करूंगा, मुझे तो बस अल्लाह के पास ले जाओ आप, सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाहुम्मा जालना मिन्हुम, अल्लाह हमें भी उनमें शामिल करो। या जब हमारे पास फरिश्ते हैं तो हम कहें कि हमें अल्लाह के पास ले चलो, इतनी हमें खुशी और इतनी हमें अल्लाह से मुलाकात का शौक हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह से मुलाकात करने को महबूब रखता है अल्लाह भी उससे मुलाकात को महबूब रखता है, सुभान अल्लाह। और जिसने तैयारी नहीं की होगी, अल्लाह से मुलाकात की तैयारी नहीं है, वो कहेगा रब्बे अर्जिउनी, अल्लाह मुझे लौटा दे, अल्लाह मुझे लौटा दे। वो इस वक्त बैग कर रहा होगा, लिटरली बैग कर रहा होगा, अल्लाह इनको कह मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, मुझे वापस लौटा दे। क्यों, क्या करने के लिए? लाली आमल सोले हम फीमा तरक, तू कि मैं वो नेक अमल कर दूं जो मैंने छोड़े हुए थे। इससे ये भी पता चलता है कि ये कोई गाफिल इंसान भी हो सकता है, गाफिल मुसलमान भी हो सकता है, क्योंकि वो कह रहा है नेक अमल कर लूं जो मैंने छोड़े हुए थे, जिनको मैं भूला हुआ था, जिनको मैंने साइड पे डाला हुआ था कि कर लूंगी, अच्छा कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, तरसों कर लूंगी, चर उतने देर में मौत के फरिश्ते ही आ गए। अभी टाइम नहीं है, अभी जिंदगी में बड़ा वक्त पड़ा हुआ है, अभी नहीं। वो करते करते वो दिन आ गया और अब कह रहा है मुझे छोड़ दे कि मैं जाके वो नेक अमल कर लूं। तो ये कोई मुसलमान भी हो सकता है, और काफिर तो होगा ही होगा, क्योंकि उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा हो जाए। तो अब वो ख्वाहिश कर रहा है, अब वो बैग कर रहा है। अल्लाह अकबर, आज कितनी सारे नेक अमल करने की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इंसान तवज्जो नहीं देता, इंसान सुस्ती करता है, या इंसान डिले करता है। लेकिन उस दिन बैक कर रहे होंगे कि अल्लाह मुझे जाने दे, वो नेक अमल जो मैंने छोड़े हुए थे। सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, जब उनके पास आता है मौत का फरिश्ता तो कहते हैं कि अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे कि मैं जाके कुछ सदका ही कर लूं, मेरे बैंक में बहुत पैसे पड़े हैं, मैं कुछ सदका कर लूं, मेरे पास बड़ा जेवर, मैं कुछ अल्लाह तेरे रास्ते में दे दूं और मैं नेक बन जाऊं। अब नेक बनने का बड़ा शौक हो गया, और जब पहले नेक बनने को कहा जाता था, जब नेकी की तरफ बुलाया जाता था, तो कोई होश नहीं था। जस्ट वन चांस वो मांग रहे होंगे, जस्ट वन चांस। अल्लाह अकबर, पता नहीं कितने लोग ऐसा वन चांस मांग रहे हो जो हमारे पास है। हम कितने खुशकिस्मत है ना कि हमारे पास एक नहीं, बहुत सारे चांसेस है, वो जस्ट वन चांस मांग रहा है। तो क्या उसको चांस मिल जाएगा? चांस मिल जाएगा? अल्लाह ताला कहेगा कल्ला, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। इन्ना कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये तो सिर्फ एक बात है जो कहने वाला कह रहा है। हरगिज़ नहीं का मतलब दो हो सकते हैं, एक ये मतलब हो सकता है कि हरगिज़ नहीं, अब ना तुम्हें कोई चांस नहीं मिल सकता। ये तो अल्लाह का तरीका नहीं कि किसी की मौत का वक्त आ जाए तो उसको वापस भेज दे। और दूसरा मतलब भी कि हरगिज़ नहीं, तुम ये तुम्हारी ये सिर्फ बातें कहने की बात है। जैसे इंसान अपने ख्वाब में देख ले कि मेरे पास मौत आई है, और वो ख्वाब से उठ जाए तो उसे क्या, अच्छा भला नेक हो जाएगा? नहीं होगा, फिर वही शुरू कर देगा। ये तो सिर्फ बातें हैं। इतनी प्यारी बात कतादा, बस सिर्फ लिखते हैं कि जब उसको वापसी की तमन्ना होगी तो उसको ये नहीं होगा अपने बीवी बच्चों के पास या घर वालों के पास चला जाऊं, उनको नहीं वो याद करेगा। अल्लाह अपने बच्चे से तो मिल लाऊं, अल्लाह बेटी की शादी तो कर दूं, अल्लाह शॉपिंग तो कर दूं, अभी तो मेरा ख्वाब था, मैंने फलां गाड़ी लेनी थी, फलां घर लेना था, वो भी नहीं याद आएगा। अभी तो मैंने अपनी जॉब में तरक्की लेनी थी, मेरी तरक्की होने वाली थी, अभी तो मेरी ग्रेजुएशन होने वाली थी। एक ग्रेजुएशन को तो अटेंड कर रहा हूं, एक शादी अटेंड कर रहा हूं, एक फलां से खुदाफिज तो कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कह रहा, कह रहा नेक अमल कर लो। तो कतादा लिखती है कि उसको वो नहीं याद होंगे अपने घर वाले, बीवी बच्चे, ये नहीं याद होंगे, बल्कि कोई चीज अगर याद है तो सिर्फ और सिर्फ ये कि नेक अमल याद आएंगे कि हाय मैं नेक अमल कर लूं, जो आज सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे है वो उसको याद आएंगे। वो घुला जा रहा है इन नेक अमल करने के लिए, बैक कर रहा है। और लिखते हैं कि उसको ये अमल याद आएंगे, मगर वहां से वापसी तो मुमकिन है ही नहीं। तो तुम सब ये तसव्वुर करो कि हम मर गए थे, सब ये तसव्वुर करो कि हम मर गए थे, ठीक है। अल्लाह रहम करे और अल्लाह ताला महफूज रखे। लेकिन मसलन मैं अपने आप में ही तसव्वुर कर रही थी कि मुझे कुछ हो जाता है, मैं यहीं पे मर जाती हूँ, आज के दिन मैं मर जाती। तो तुम तसव्वुर करो कि हम मर गए थे और हमने ये दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह हमें वापस लौटा दे, रब्बिरजिऊनी, तो अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दे दी कि चलो ठीक है तुम्हारे पास जिंदगी है, तो अब जो बाकी की जिंदगी गुजार रहे हो इसको यूं ही समझो कि वो मोहलत तुम्हें मिल गई, अल्लाह ताला ने कह दिया कि जाओ, मैं तुम्हें एक इम्तिहान और दे देता हूँ, अब क्या करोगे। सबसे अहम चीज तुम्हारे लिए क्या होगी? साले अमल, और कुछ भी नहीं। वो साले अमल जो प्रायोरिटी नहीं था और कोई और चीजें प्रायोरिटी थी ना, वो जिनके पीछे हम आज घुले जा रहे हैं, आज कितनी इंपॉर्टेंट लग रही है ना हमें, हमें ऐसे लगता है बस ये ही है, बस यूं ही हो, बस उसके पीछे हम इतने हलकान हो जाते हैं। वो चाहे कोई दुनिया का काम है, चाहे कोई परेशानी है, चाहे कोई प्रॉब्लम है, चाहे घर है, चाहे गाड़ियां है, चाहे बच्चे हैं, चाहे काम है या कारोबार है या कपड़े हैं या जेवर है या पार्टी है या शादी है या जीना है या मरना है, कुछ भी है, कुछ भी है, वो बड़े से बड़ा सदमा है या आपका बड़े से बड़ा स्ट्रेस है, मसला है, या बड़ी से बड़ी आपकी खुशी है, या बड़े से बड़ा आपका सौदा है, या बड़े से बड़ा आपका इम्तिहान है, या बड़े से बड़ी आपकी आसाइश है, मुझे बताएं इस वक्त वो कितनी हकीर और बेवकत हो जाएगी, बेकीमत हो जाएगी, और इस वक्त उस बंदे को कुछ भी नहीं नजर आ रहा जिसकी आंखें बंद होने वाली हैं, पूरी दुनिया की हर खुशी, हर गम, हर ख्वाहिश, हर आरजू मल्टीप्लाई विद जीरो हो गई, मल्टीप्लाई विद जीरो। अल्लाह अकबर। सिवाय नेक अमल के कुछ नजर नहीं आ रहा। एवरी प्रायोरिटी इज जीरो। कितनी जल्दी इंसान इन चीजों को बैक बर्नर पे रख देगा। आज हमें जो मौका मिला है तो हम सोचें कि आज मर गए, हमने दुआ की और अल्लाह ने हमें चांस दे दिया हम पे रहम करके, तो अब हम क्या करें? जल्दी जल्दी फिर नहीं कामल करें। वो तो कहता जा रहा है रब्बिर जिऊनी, तकरार कर रहा है, बार बार कह रहा है, मगर अब वापस नहीं जा सकते क्योंकि अल्लाह ताला को पता है इसने करना कराना कुछ नहीं है, करना होता तो बड़ी उम्र इसको भी नहीं थी इसने कर लेना। उसका कर्म है उस रब का कि जो बातें हम उस वक्त सुन नहीं सकते कि मरने वाला इस वक्त क्या कह रहा है, अल्लाह अकबर, वो उस रब ने हमें इस कुरान में बता दी उससे पहले कि वो वक्त आ जाए। और हाँ, अल्लाह ना करे ऐसे बेकार, कितनी इबरत है ना इसमें। और हर इंसान को मौत के मरने से गुजरना, अगर कुछ चीजें अभी करने की हैं तो इससे पहले कि इंसान का रब्बे रजिऊनी उनको कर जाए, क्योंकि उस वक्त फिर कह दिया जाएगा हो ही नहीं सकता, हमें मरवाहिम बरजखुन इला यौमि युबअथून, और इनके पीछे बरजख होगी कयामत के दिन तक। बरजख क्या है? वो जिंदगी जिसको हम कब्र की जिंदगी कहते हैं, वो जिंदगी जिसको हम कहेंगे कि मौत से लेकर कयामत तक के लिए जहां पे रहना है, वो पर्दा है। असल में पर्दा किससे है? दुनिया से भी कट ऑफ हो गए और आखरत में कयामत के दिन से भी कट ऑफ है। अब देखिए बीच में है ना, इन द मिडल है, ट्रांजिशन पीरियड है, अब बस वहां पे है। अब तो बरजख ही है तुम्हारे लिए कयामत के दिन तक, अब तो नहीं तुम वापस जा सकते। कल्ला, ये तो तुम्हारी बातें हैं बस कहने की। करना होता बड़े तुम्हारे पास रिमाइंडर्स आए थे, बड़े लोग तुम्हारे सामने दुनिया से गए थे, तुम्हें सब पता था, तुमने करना होता तो कर लेते, तुमने नहीं किया। मैं यही सिर्फ कहती हूँ कि अल्लाह अल्लाह ये आयते मेरे खिलाफ हुज्जत ना बने, मेरे हक में ही हुज्जत बने कि मैंने ये पढ़ाई आपको सुनाई, पढ़ाने वाले भी और सुनने वाले भी अब में से किसी के खिलाफ ही हुज्जत ना बने कि तुम्हें तो बता दिया था, तुमने तो पढ़ भी लिया था, फिर क्यों नहीं कहेगा वो, फिर भी तुमने ना कुछ किया। फायदा नफा फिर सूर, फिर जब सूर में फूंक मार दी जाएगी, फलां सब बैना हो भी हमारे से बला या तसालू, तो सब नसब खत्म हो जाएंगे, सब रिश्ते आपस के अंदर खत्म हो जाएंगे, और वो एक दूसरे को पूछेंगे भी नहीं। क्यों क्यों नहीं पूछेंगे? इसलिए क्योंकि हर कोई अपनी अपनी मुश्किल के अंदर फंसा होगा, और देखिए अब्दुल्ला बिन मसूद का कॉल है कि क्यामत के दिन एक एक बंदा, एक एक मर्द औरत को हशर के मैदान में लाया जाएगा और तमाम अव्वलीन और आखरीन के इस भरे मजमे के सामने खड़ा किया जाएगा। फिर अल्लाह ताला का एक मुनादी ये निदा करेगा, ये शख्स फलां बिन फलां है, अगर किसी का कोई हक इसके जिम्मे है तो सामने आ जाए, इससे अपना हक वसूल करे। अल्लाह अकबर, पता है क्या होगा? सोचे आप, ये वो वक्त होगा कि अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि बेटा खुश हो रहा होगा कि मेरा हक बाप के जिम्मे निकल आया, और बाप का कोई हक बेटे पे हुआ तो बाप खुश होगा कि मैं इससे आज वसूल करूंगा। अल्लाह अकबर। इसी तरह मियां बीवी और बहन भाई, जिसका जिस पे कोई हक होगा किसी ने छोड़ना, ये मुनादी सुनकर, इस ये जो निदा होगी ना, ये ऐलान, ये सुन के वो वसूल करने पे आमादा भी होंगे और खुश भी होंगे। अल्लाह अकबर। इंसान कहता ना, फलाने ने मेरा हक मार लिया, यहाँ पे उसके आगे पीछे उसके ऐसे बैर पड़ जाते हैं, कहते छोड़ना नहीं है, वो एक दिन आने वाला है, तुम आज छोड़ दो तो अल्लाह ताला वहां पे देखो कैसे दिलवाने का, उस दिन वो खुश होंगे। सोचिए, बाप बेटे को नहीं छोड़ेगा तो और को किसी का क्या कहना, माँ बच्चे को नहीं छोड़ेगी कि अच्छा मैं इसे ले लूं। अल्लाह अकबर। कोई किसी से पूछ, कोई किसी को कुछ पूछने वाला नहीं होगा। आप देखिए इतना बड़ा दिन कयामत का है, कोई वक्त ऐसा भी होगा कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई वक्त ऐसा भी होगा एक दूसरे से सवाल करेंगे, कोई किसी से नेकी मांगेगा, कोई कुछ करेगा, क्योंकि बहुत लंबा दिन है, कई फेजेस आएंगे। बस जगह आता है कि मुसलमान बच्चे जो नाबालिग थे, वो बालिग नहीं हुए थे और मर गए, वो जन्नत का पानी लिए निकलेंगे, लोग उनसे पानी मांगेंगे तो वह कहेंगे हम तो अपने माँ बाप को तलाश कर रहे हैं, ये पानी उनके लिए। सुभान अल्लाह। तो हर रिश्ता वैसे कट जाएगा, लेकिन ये बाज ऐसे मौके आएंगे जिसके अंदर ऐसे कोई ऐसे बच्चा भी होगा, वहां पे कोई किसी को कहेगा मेरी एक नेकी, मुझे एक सिर्फ अपनी नेकी दे दो, सिर्फ एक नेकी दे दो, लेकिन कोई देने वाला नहीं होगा। हालांकि दुनिया में नसब के ऊपर इंसान फखर करता है, और कुरैश मक्का तो बहुत ज्यादा इस पे फखर करते थे, तो उस दिन देखो सारे रिश्ते कट गए, वो पहचानने को तैयार नहीं होगा किसी को, और हर कोई छुपता फिर रहा होगा कहीं मेरे से ना कोई नेकी मांग ले। फमन थकुलत मवाजीनहू फऊलाइकहुमुल मुफ्लिहून, अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम। तो जिसके भारी हो गए पलड़े तो ये लोग हैं जो फला पाने वाले। कयामत के दिन आपको जैसे पता है कि नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी, जिसकी एक नेकी भी बढ़ गई तो वो मुफ्लिहून होंगे, वो फलाह पाने वाले होंगे, वो उस दिन कामयाब लोगों में से होंगे। अल्लाह अकबर। और हमें पता चलता है कि आमाल की उस दिन शक्लें होंगी, उस दिन वजन होंगे। जितने इखलास के साथ कोई अमल किया जाएगा उतना ही उसका वजन भारी होगा। एक खजूर को अल्लाह ताला चाहेगा तो वो हर बहुत पहाड़ के बराबर कर देगा कि ये एक खजूर दी हुई अल्लाह के रास्ते में कितने पता नहीं खलूस और कैसे हालात में दी हो। अल्लाह ताला सब चीजों को देख के उसके मुताबिक उसको अजर वहां पे देगा, उसके मुताबिक वजन होगा अमाल का। अल्लाह ताला ने क्वांटिटी नहीं देखनी कि 10 रुपए दिए कि 10,000 रुपए दिए। हो सकता है 10,000 देने वाले के अमल का वजन कुछ भी ना हो और 10 रुपए देने वाले का अमल बहुत भारी हो। ये तो अल्लाह का तराजू है, वो तराजू जो है उसके अंदर कितने वजन की कोई नेकी तुलती है ये सब डिपेंड करता है उसके हालात वाकयात, जिन हालात में उसने ये नेकी की, जिस माहौल में उसने नेकी की और कितने खलूस से और किस नीयत से नेकी की है। और मवाजीन आया, मीजान की जमा है ये। अब इसकी क्या वजह है? मुफस्सिरीन कहते हैं कि हो सकता है मवाजीन जमा लाने की ये वजह हो क्योंकि वो तराजू इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसके अंदर सातों जमीनों आसमान रख दिए जाए तो भी वो पलड़ा भरेगा नहीं, वो इतना बड़ा पलड़ा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो वो जिसके भारी हो गए, आप सलाम फरमाते हैं कयामत के दिन तराजू पर एक फरिश्ता मुकर्रर होगा जो हर इंसान को लाकर तराजू के पास बीचों बीच खड़ा कर देगा, फिर नेकी बदी तोली जाएगी। अगर नेकी बढ़ गई तो वो फरिश्ता अनाउंस करेगा, ऐलान करेगा बावाज़े बुलंद, फलां बिन फलां निजात पा गया, अब इसके बाद हलाकत इसके पास कभी नहीं आएगी। अल्लाहुम्मा जालना मिन्हु। और अगर बदी बढ़ गई तो निदा करेगा और सबको सुना के कहेगा फलां का, जो फलां का बेटा है वो हलाक हो गया और अब भलाई से हमेशा के लिए महरूम हो गया। इसी को सूरह हाक्का में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी फयकूलु हा उम्क़रऊ किताबिया। अल्लाह अकबर, जिसकी किताब उसके दाहिने हाथ में दी गई वो तो कहेगा, खुशी के साथ नारा लगाएगा और कहेगा हा उम्क़र, जैसे वाह कोई कहता है, इकरा किताबिया मेरी किताब को पढ़ो, इन्नी दनंतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि मेरा एक दिन हिसाब होना तो मैंने उसकी तैयारी की थी। वह हुआ फी ईशा ते रो दिया फी जन्नत आलिया, तो वो ऐशो आराम में होगा और आला जन्नतों में। और फिर जिसका अनामा आमाल उसके बाएं हाथ में दिया गया, वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू, जो दिया गया नामा आमाल अपने बाएं हाथ में उसकी किताब दी गई वो फेल हो गया, अब वो क्या कहेगा? अब उसकी भी एक पुकार होगी, उसका भी एक रोना होगा और वो कहेगा फयकूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया। वो कहेगा हाय काश मेरा नामा आमाल ना मुझे दिया जाता, ना मेरी किताब मुझे दी जाती, वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे पता ही ना होता मेरा हिसाब क्या हुआ। या लैता कानत अल-क़ाज़िया, हाय काश मौत मेरा सफाया कर देती और उसके बाद दोबारा मुझे उठाया ही ना जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो वमन खफत मवाजीनो, जिसकी एक नेकी भी कम हो गई, एक गुना भी उसका बढ़ गया, एक गुना भी पड़ गया, उसका क्या होगा? फ उलाइकल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून। ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने खसारे में डालो अपनी जानों को, जहन्नुम में हमेशा रहने वाले, हमेशा रहने वाले हैं जहन्नुम में। इन्होंने अपनी जानों को खुद खसारे में डाला, किसी ने नहीं डाला, किसी ने इनको कुछ नहीं किया, इन्होंने अपने साथ खुद जुल्म किया। देखिए कहा जा रहा है खासिरु अनफुसा, क्योंकि ये इंसान की अपनी ही तो अमाल है जो उसको दिए जाएंगे, किसी और के थोड़ी उसके ऊपर डाले जा रहे हैं। खुद ही किए ना तुमने, खुद ही जुबान ये चलाई, खुद ही ये हाथ चलाए, खुद ही ये आंखें कहाँ कहाँ देखा इन्होंने, खुद ही इन कानों को तुमने किधर क्या क्या चीजें सुनवाई, खुद के तुम्हारे अमल है ना, तुमने अपना नुकसान तो खुद ही किया। इंसान सोचे किसी का दुश्मनी अपने साथ दुश्मनी करता है जब वो ये करता है। तलफा वुजूहहुमुन्नार, झुलसा देगी उनके चेहरों को आग, और कैसे झुलसाएगी कि उनके चेहरों को चाट लेगी। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, वहम फीहा कालिहून, और वो उसमें तेवरी चढ़ाने वाले होंगे। कालिह कहते हैं जब इंसान की दांत सिर्फ विजिबल हो, दांत सिर्फ विजिबल हैं और होंठ खत्म हो चुके हैं, होंठों को आग ने झुलसा दिया। तो इमाम कुर्तबी लिखते हैं आग से ऊपर वाला जो होंठ होगा वो झुलस के अंदर जा चुका होगा, तो होगा ही नहीं जैसे, और नीचे वाला होंठ अस्तग़फिरुल्लाह झुलसने की वजह से इतना लंबा हो जाएगा कि पेट तक पहुंचा हुआ होगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाह माफ कर देना, तो इतना लंबा हो जाएगा। कैसी उनकी शक्ल होगी, कितनी कबीह, कितने बदशक्ल हो जाएंगे, और जिल्लत उनके ऊपर पड़ी होगी, और हर खैर से मायूस हो जाएंगे। उनको सामने अब नजर आ रहा है, हलाकत नजर आ रही है। अब देख लेना, अब ये वो दिन है कि कुछ लोग तो हैं जिनके पलड़े भारी हो गए, वो तो फला पा गए। आपने देखा हमने फला, फला क्या चीज होती है, फला होती है वो कामयाबी जिसमें निजात इंसान पाले बुराई से, और जो सआदत है वो उसको नसीब हो जाए। यानी एक है ना निजात के जहन्नुम से निजात पाले, एक है फलाह कि जहन्नुम से निजात पाके जन्नत में दाखिल हो, एक है फौज, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी वो क्या होती है, फौजुल अजीम जिसको कहते हैं। तो एक वो खुशकिस्मत है और एक ये बदकिस्मत है। एक एक नेकी कम हो गई, एक नेकी के कम होने पे भी ऐसा हो सकता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए कुछ चेहरे उस दिन होंगे, अल्लाह फैजा जाअत अस-सौखा यौमा यफिरुल मरु मिन अखीह व उम्मीही व अबीही व सहिबतीही बनी। अल्लाह ताला ने फरमाया ना उस दिन जब ऐसा दिन होगा ना तो इंसान भागेगा अपने भाई से, बेटे से, बीवी से, माँ बाप से। उस दिन क्या होगा, कोई चेहरे कैसे होंगे, वजूह हो यौमा इज मुसफिरा दाहिका तो मुस्तबशिरा। उस दिन कुछ चेहरे इतने खुश होंगे, खुश नहीं सिर्फ होंगे, हंस रहे होंगे, हंस रहे होंगे, चमक रहे होंगे, इतने दहाई खौफनाक माहौल में भी के चेहरे दमक रहे हैं और वो खुश हैं, उनके लिए हर मरहला आसान है। देखिए कहीं मुश्किल तरीन मरहले आखरत के, मौत भी मुश्किल है, कब्र भी मुश्किल है, हशर भी मुश्किल, पुर्सिरात भी मुश्किल, मीजान भी मुश्किल, उनके लिए सारी मुश्किलें आसान हो गई। और कोई है जिनके लिए खौफ है, उदियल किताबु फतर मुजरिमीना मुशफिकीना माफी, वो जब किताब रखी जाएगी तो मुजरिम अपनी किताब को देख के खौफजदा हो रहा, अपनी किताब को देख के, अपने ही नामा अमाल को देख के इतना डर जाएंगे कि अल्लाह इसमें क्या है, मुझे तो पता है, मुझे तो अपने कच्चे चटे खुद पता है, जिसमें ना छोटी ना बड़ी कोई भी चीज ही नहीं छोड़ी तूने, अल्लाह हर चीज तो इसमें लिखी हुई। तो जब इन्होंने अपना खसारा खुद किया ना, खुद अपने साथ दुश्मन थे, तो अब जब जहन्नुम में डाले जाएंगे तो चेहरों को जहन्नुम चाट लेगी। चेहरा वो चीज है जो इंसान की इज्जत का भी निशान और सबसे नाजुक एक इंसान का बॉडी पार्ट है, जिसके ऊपर इंसान कोई चीज नहीं बर्दाश्त करता, अगर कोई चीज उसकी तरफ आने लगे तो सबसे पहले चेहरे को बचाता है, मेरे चेहरे पे ना लग जाए, चाहे अपना बाजू आगे कर देगा लेकिन चेहरा मेरा बच जाए, अपनी कमर आगे कर लेगा लेकिन चेहरे को मोड़ लेता, वो ही चेहरा उसको आग चाटेगी। तो काले, ये भी मुफसरी ने इसका तर्जमा किया कि जैसे बकरे की सिरी होती है ना, जिसमें सिर्फ दांत ही रह गए होते, बाहर को निकले मुंह तो खत्म हो चुके होते, और उसको कहा जाएगा अलम तकुन आया थी तो चला अलैकुम। इससे आप सोचिए, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, आपको पता चलेगा कुरान कितना इंपॉर्टेंस रखता है। कि कहा जाएगा सारी बातें, कोई ये नहीं कहा जा रहा तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, क्या कहा जा रहा है, क्या तुम्हारे पास हमारी आयतें नहीं पढ़ी गई थी, इसलिए आयतों की क्यों बात की गई, इसलिए कि आयतें जो ये सुन ले, हो नहीं सकता कि वो अपनी जिंदगी ना बदले, ये आयतें जिसके दिल में उतर जाए ना, हो नहीं सकता उसकी जिंदगी ना चेंज हो, उसकी जिंदगी बेहतर ना हो। इसीलिए तो सूरह मुल्क में भी वो कहेंगे ना फरिश्ते, वो पता है ना, जब अल्लाह अकबर, जब जन्नत ही जन्नत की तरफ ले जाए जाएंगे ना, तो जन्नत के गेट ना पहले से खुले होंगे, इसलिए पहले से खुले होंगे कि एक लम्हा भी इनको वेट ना करना पड़े, फौरन अंदर जाए, इंतजार ना करना पड़े, इंतजार बड़ा मुश्किल होता है ना। तो जब जहन्नमी जहन्नम की तरफ ले जाएंगे जाएंगे, बहुत अरसा तक उनको खड़े रहना पड़ेगा, जहन्नम के गेट बंद होंगे, जहन्नम के गेट बंद होंगे तो वो खड़े में वेट कर रहे हैं, उस वक्त वो कन्वर्सेशन हो रही है, फरिश्ते उनसे पूछते बदबخت हो तुम यहाँ पे क्यों आ गए, तुम्हारे पास नहीं आए थे पढ़ी जाती थी, तुम्हें किसी ने नहीं बताया था, समझाया नहीं था किसी ने, कहेंगे हाँ कहा तो था, खालू लो कुन्ना नस्मा और ना करू मा कुन्ना फी असहाब सरीर, काश के हम सुन लेते या समझ जाते तो आज हम जहन्नुम में ना होते। वो सोचे वो ब्लेजिंग फायर उनके सामने होगी, आग जो रोर कर रही है, धाड़ रही है, और ये खड़े हुए, और इनको अब पता है कि हमने इसमें जाना है, पता नहीं कितना वक्त खड़े रहे। तो उनसे कहा जाएगा क्यों तुम्हारे सामने हमारी आयतें नहीं पढ़ी जाती थी, तुम्हें सुनाई नहीं जाती थी, और तुम उसको झुटलाते थे, उस वक्त रिजेक्ट करते थे। एक तो रिजेक्ट करना होता है बोल के, क्या हम कह के हमने नहीं माना, ये तो काफिर ही करते, लेकिन एक होता है जाहिरी जुबान से तो नहीं कहना लेकिन अमल में उनको मानना ही नहीं, ये मुनाफिकाना रवैया। और इससे सोच लें कि ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है ये आयतें, मान के बाद में अमल करना तो बाद की बात है, आज तो सुनना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, और इसको माइंड करते हैं कि हमें आप बताएंगे, हमें क्या नहीं पता, हमें सब पता है, हमारे पास नहीं टाइम इसके लिए, ये देखो कोई ये तो ऐसी चीज है कि सारे लोगों का ही काम है, हमारे हमारे पास क्या टाइम है इसका, सब जानते हैं हम। अल्लाह अकबर। तो उनको कहा जाएगा तुम्हारे पर आयते नहीं पढ़ी गई, यानी वो लमा इस काम में लगे हुए थे, तुम्हारे सामने कई दफा ये आयते आई, तुमने नहीं इनको माना, तुमने अमल नहीं करके दिखाया इन पे। खालू, वो कहेंगे रब्बाना है हमारे रब, अब वो कह रहे हैं रब्बाना, अब रब याद आ गया, गलत अलैना शिकवातुना, जो काफिर है वो भी कहेगा रब्बाना, हमारे ऊपर हमारी बदबख्ती छा गई थी, वो कुन्ना कौमन तो अलीन, और हम कौम थे गुमराह हुए वे, हम गुमराह लोग थे। अच्छा अब आप देखे, अब इस वक्त ये क्या कहते हैं कि अल्लाह हमारी बदबख्ती हमारे पर आ गई, इसका मतलब ये नहीं है बदबख्ती का कि अल्लाह ताला ने कोई तकदीर इनके ऊपर ऐसी बना दी थी तो अब बेचारे इसके अंदर चले गए क्योंकि तकदीर का फैसला था, ये नहीं मतलब है, वो इतराफ कर रहे हैं हमारी बदबख्ती हमारे ऊपर गालिब आ गई। और बदबख्ती क्या है, शकावत क्या है, इमाम कुर्तुबी कहते हैं ये किस चीज की बदबख्ती थी, लज्जतों की और ख्वाहिशात की, प्लेजर्स ऑफ दिस लाइफ और डिजायर्स, ये इन्होंने हमारे ऊपर गलबा पा लिया था। समझ आ रही है आपको बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिंदगी के प्लेजर्स, इनकी ख्वाहिशात जिंदगी की, इसके अंदर हम इतना पड़ गए, इतने इसमें कंज्यूम हो गए कि हमें पता ही नहीं चला। हम उन्हीं चीजों में लगे रहे, हमने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि अल्लाह ने क्या उतारा। बस जो दिल मेरा चाहता है, जो मेरा मूड है, जो मेरी ख्वाहिश है, उसी के ऊपर चलते रहे। मुझे कैसे जिंदगी गुजारनी है, सिराते मुस्तकीम क्या है, इसको तो जानने की भी कोशिश नहीं की। और जो इंसान के आखरत का अकीदा कमजोर हो ना, उसके बस यही, उसके दिमाग पे बस यही सवार रहता है, मुझे कैसे और कहाँ से बस अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी। और मुकाबला इन्हीं दो चीजों में तो है, एक तरफ अल्लाह ताला का बताया हुआ रास्ता है और एक तरफ मेरी ख्वाहिशात का रास्ता है। मेरी ख्वाहिशात का रास्ता मुझे एक तरफ लेके जाता है, अल्लाह ताला का बताया रास्ता दूसरी तरफ लेके जाता है। मैंने चॉइस करनी है, मैंने किसकी तरफ जाना है। तो इनको उन्होंने कहा हमारे ऊपर गालिब आ गई, हम हमारे ऊपर छा गई, हमें कंज्यूम कर लिया इन लज्जतों और ख्वाहिशात ने, उस रास्ते ने। हालांकि अल्लाह की तरफ से तो आ चुका था, पर ख्वाहिशात ही जो थी जिन्होंने इनको फिसला दिया। ख्वाहिशात पूरी करते 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 एक ख्वाहिश पूरी होती नहीं, दूसरी शुरू हो जाती, दूसरी पूरी होती नहीं, तीसरी जर उठा लेती, इसी के अंदर सारी जिंदगी गुजर गई। अल्लाह ताला फरमाते ना, तुमने ऐसा बंदा देखा है जो कहता है अल्लाह के अलावा कोई इला नहीं, मगर उसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इला बनाया हुआ, यानी मेरी मर्जी, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारनी, वो ही उसका इला है। तो बदबख्ती गालिब आने का यही मतलब है कि हम लज्जतों में, शहवतों में पड़े रहे, सारी जिंदगी इसमें गुजार दी। ये एक फिसलन है, पता है, ये स्लोप है एक। अपना आपको पता है ना, जहन्नुम नीचे को है, उसके दरक है, दर्जे नहीं है, दरक है, दरक नीचे को होते, वो ये फिसलन है। फिसलता है इंसान, एक दफा फिसल जाए ना, फिसलता ही चला जाता है। तो वापस खड़े होने के लिए ना अपने आप को उठाना पड़ता है, वेट उठाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, और वहां से उठा के सीधे रास्ते पर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर नहीं करेंगे तो फिसलते चले जाएंगे और जहन्नुम तक पहुंच जाएंगे। जन्नत जो है उसके दर्जे हैं, वो ऊपर को जाती है, और ऊपर को जाने के लिए आसान होता है ऊपर जाना कि मुश्किल? मेहनत करनी पड़ती है ना, जोर लगाना पड़ता है ऊपर जाने के लिए, चढ़ाई चढ़ना आसान नहीं होता। जन्नत ऊपर को है, अल्लाह अकबर। लेकिन उसकी, वो कहता है मेरी बदबख्ती गालिब आ गई, तो बदबख्ती उसका असल में अपना अमल है, बदअमल, वरना वो है ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जाना होती। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी, अल्लाह ताला ने नहीं इसको किया हुआ कि जन्नत ही, इस जन्नत इसको मिलेगी और इसको जहन्नम मिलेगी क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं। नहीं, सारी उसकी मालूम, अपनी फितरत में ऐसे ही नहीं कि इंसान अल्लाह ने तकदीर बना दी और उसके ऊपर गालिब आ गई, नहीं, वो खुद वो अमल करता है, वो खुद उस रास्ते को चूज करता है। तो ये लोग उस दिन अपनी सफाई पेश नहीं करेंगे, इतराफ करेंगे कि हम किस चीजों में गुम हो गए थे, हम किस रास्ते पे चल पड़े थे जो हिदायत का नहीं था, गुमराही का रास्ता, हम तो रास्ता ही गुम हो गया था, सीधा रास्ता जितनी जिंदगी हमने गुजारी असल रास्ते से हटी भी गुजारी, जब हिदायत के रास्ते से हट गए तो गुमराही है। इसमें सब लोग आ गए, काफिर भी गुमराह है, एथिस्ट भी गुमराह है, मुशरिक भी गुमराह है, और अल्लाह के रसूल के अहकामात को छोड़ के दुनिया में गुम होने वाला भी गुमराह है, गुमराह, ग्राह गुम कर देने वाला। कहते हैं इस सवाल के, जब उनसे सवाल पूछा गया ना कि नहीं आई थी तुम्हारे पास, आए थे, तो वो कहते नहीं, हमने जानबूझ के नहीं झुठलाया, असल में हमारी ख्वाहिशात ने हमें इतना मगलूब कर दिया कि हम गुमराही के रास्ते पर चल पड़े। वाकई ख्वाहिशात के पीछे ही इंसान जिंदगी अपनी लगा देता है, उसको पता भी नहीं चलता, ख्वाहिश ख्वाहिश पूरी करते 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 वो एंड तक पहुंच जाता है अपनी जिंदगी के, कब जिंदगी खत्म भी हो गई, ख्वाहिशात फिर भी पूरी नहीं हुई। आप सजरा फरमाते ना, जब जन्नती जहन्नुम में अपनी, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे, तो अल्लाह ताला मोमिनों से पूछेगा, अच्छा ये अल्लाह ताला पूछेगा अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा कि तुम्हारी एक जगह जो जन्नती जहन्नो जो जो बंदा जहन्नुम में पहुंच जाएगा ना, अल्लाह ताला फरमाएगा तुम्हारी एक जगह जन्नत में भी थी, लेकिन वो जगह अब किसी जन्नती को मिल गई। इसने अपने अमल ऐसे किए, अल्लाह ताला ने एक जन्नत में प्लॉट रखा हुआ, एक जहन्नुम में रखा। इंसान अपने अमल से किसको खरीदता है अपने लिए? आपको पता है जहन्नुम का भी प्लॉट इंसान खुद खरीदता है, खसीरू अनफुसा हो, वो भी खुद ही खरीदता है, चाहे तो जन्नत का खरीद ले। रब्बना अखरिजना, वो कहेंगे दुहाइयां देंगे, है हमारे रब हमें यहां से निकाल, मिना इसमें से, फइना फइना ज़ालिमून, अगर हम दोबारा ये कभी करेंगे तो हम जालिम होंगे, अल्लाह हमें यहां से निकाल दे अल्लाह। अब देखो उस वक्त जब मौत आई तब भी दुहाइयां दे रहे, अब जब जहन्नुम में है तब भी दुहाइयां दे रहे, अल्लाह हमें निकाल दे, एक दफा हमें वापस भेज दे, अल्लाह हमें एक दफा निकाल दे, अगर हमने दोबारा ऐसे किया ना हम जालिम होंगे। अब वो पता है अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि जहन्नुम पहले तो दरोगा जहन्नुम को बुलाएंगे 40 साल तक, 40 साल तक पुकारते रहेंगे लेकिन कोई जवाब नहीं मिलेगा। सोचे जरा, और 40 साल कौन से, हमारे दुनिया के या आखरत के 40 साल? इमेजिन करें, जाहिर है आखरत के 40 साल की बात हो रही है, दुनिया तो अब खत्म हो गई, और वहां का एक दिन कितना है? हमारे 1000 साल के बराबर है वहां का एक दिन, और वहां के जो 40 साल होंगे वो कितने होंगे? यहाँ पे तो एक दिन मुश्किल का नहीं गुजारा जाता, और कहते हैं हाय पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारे, हाय हमें तकलीफ में हमसे नहीं गुजरता ये वक्त। और सोचे 40 बरस भी सिर्फ कह दिए जाए तो बहुत है, लेकिन 40,000 साल कैसे गुजारेगा इंसान? तो कोई जवाब नहीं, दुहाइयां देता जा रहा है, रोता जा रहा है, आखिर 40 साल के बाद जब जवाब मिलेगा तो वो क्या जवाब मिलेगा? तुम यहीं पड़े रहो बस, दारोगा जहन्नुम ये कहेगा। कोई उनकी पुकार की वैल्यू नहीं होगी कि वो तरस खा ले। अच्छा अब वो ना फिर अब ना अल्लाह ताला को पुकारना शुरू करेंगे, ये वाली जो बात है ना, ये वो पुकार पुकार के दारोगा जहन्नुम को फिर अब रब्बना अखरिजना कहेंगे, ए हमारे रब तू हमें निकाल, हमारी बदबखती हमारे पर आ गई थी गालिब, हम अपनी गुमराही में डूब गए थे, अल्लाह हमें एक दफा यहां से निकाल दे, अब हम कभी ये बुरे काम नहीं करेंगे, करें तो तू जो चाहे सजा दे। अल्लाह तो पता नहीं कितना जमाना गुजर जाएगा, उनको जवाब ही नहीं मिलेगा। और सोचिए इंतजार की घड़ियां भी कैसी होती है, एक इंतजार और एक उम्मीद के, हो सकता है हो सकता है हो सकता है कहीं से पॉजिटिव जवाब आ जाए, हो सकता है अल्लाह ताला मान जाए। फिर इसका जवाब उनको पता है कब मिलेगा? अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि दुनिया की दुगनी उम्र तक उनको जवाब नहीं दिया जाएगा। दुनिया की पूरी दुनिया की जितनी उम्र है ना, इसको डबल कर दे, अभी तो खत्म नहीं हुई, 1000 साल तो अभी गुजर गए, इसको डबल कर ले, इतनी उम्र तक उनको जवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह तू हम पर रहम फरमाना और हमें माफ कर देना। फिर अल्लाह ताला उनको जवाब देगा, काल अखसाऊ फिया वला तुकल्लिमून, दूर रहो यहाँ। और ये कुत्ते को धुतकारने के लिए आता है, ऐसे उनको धुतकारा जाएगा और कहा जाएगा मेरे से बात ना करो, अब मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला उनसे कलाम भी नहीं करना चाहेगा। और कहा जाता है कि इसके बाद वो बोल ही नहीं सकेंगे कभी, वो कुछ कह ही नहीं सकेंगे, जब उनको ऐसे दुत्कार दिया जाएगा ना और ऐसे चुप करा दिया जाएगा। तो हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि अहले जहन्नुम का ये आखिरी कलाम होगा जिसके जवाब में उनको ये कह दिया जाएगा कि हमसे बात ना करो, फिर वो किसी से कुछ कलाम नहीं कर सकेंगे, जानवरों की तरह बस एक दूसरे की तरफ देख के बोलते जाएंगे। और कुराने करीम में जहन्नम वालों की 5 दरख्वास्तें नकल की गई हैं, 5 चीजें, 5 इनकी रिक्वेस्ट, 5 इनकी दुआइयां, उनमें से 4 का जवाब दिया गया और 5वीं का जवाब में ये आया, ला तुकल्लिमून, मेरे से आप कलाम ना करो, बस ये लास्ट वन है, इसके बाद नहीं। वो जो चार थी ना पहले, उसके बाद तो फिर भी बोलते रहे होंगे, इसके बाद कुछ कलाम नहीं कर सकेंगे। अल्लाह अकबर। फिर इनसे कहा जाएगा, इन्नहु काना फरीकुम मिन इबादी यकूलूना रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना वअंता खैरुर राहिमीन। एक ग्रोह ऐसा होता था मेरे बंदों का, जो तुम्हारे अंदर ही रहता था, तुम्हारे साथ ही रहता था, तुम्हारी गलियों कूचों में फिरता था, और वो दुआएं करता था, ए रब हम ईमान लाए तुझ पे, ए अल्लाह हमें बख्श दे, ए अल्लाह हम पे रहम कर, अल्लाह तू खैरुर राहिमीन है, रहम करने वालों में बेहतरीन रहम करने वाला। एक ऐसे भी मुसलमानों का ग्रोह था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में तो वो कमजोर मुसलमान थे जो ईमान ले आए थे, और उनको ये सताते थे काफिर। और हर दौर में ऐसे लोग रहे हैं जो के जिनका काम ही क्या होता है कि मुसलमानों को सताना, उनको रेडिक्यूल करना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरे एक बंदे होते थे, अल्लाह ने उनको अब इबादी का, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इतनी इज्जत देता है कि उनको अपने बंदे कहता है, और उनकी दुआ बताई कि वो मेरे से ये दुआएं मांगा करते थे, वो ऐसे जिंदगी गुजारते थे। तो तुमने क्या किया, फतखस्तुमूहुम सिखरियन, तुमने उनको मजाक का निशाना बनाया था, तुम उनके ऊपर हंसते थे, तमस्खर उड़ाते थे उनका, हत्ता अनसौकुम जिक्री, हत्ता कि तुम्हें हमारा जिक्र भी भुलवा दिया इस चीज ने, यानी तुम इतना मुसलमानों के पीछे पड़े हुए थे, इतना तुम उनके मजाक उड़ाने में लगे हुए थे कि तुम्हें ये भी भूल गया कि तुम्हें हमारी इबादत करनी है, तुम्हें हमारी इबादत के लिए पैदा किया गया। इसके दो माने, और ये दूसरा माना क्या है, हत्ता कि तुमने उनको मेरी याद भुला दी, तुम इतना उनके पीछे पड़ गए, ऐसे उनके पीछे पड़े, इतना उनको तुमने हकारत से उनसे पेश आए, या इतना उनका मजाक किया कि वो बेचारे तुम्हारे डर की वजह से, अल्लाह ताला के अहकामात से पीछे हट गए, तुम्हारे प्रेशर की वजह से इन लोगों ने नेकी के कामों को छोड़ दिया। ठीक है, कई लोग आप देखे ना इस्लामोफोबिया की वजह से कितना डर के इस्लाम से पीछे हो जाते, कई लोग अमल में पीछे रह जाते, लोगों के हंसने की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से, माहौल की वजह से। तो तुमने इस तरह उनका मजाक उड़ाया कि उनको भुलवा ही दिया मेरा जिक्र, या फिर दूसरे माना कि उन्होंने तुमको मेरी याद भुला दी, कि उनके अंदर तुम इतने बिजी हो गए कि मेरी याद ही तुम भूल गए कि तुमने मुझे याद करना है। दूसरा भी इस, एक और भी माना इसका कि उन्होंने तुमको मेरी याद भुला दी, यानी कि उनके पीछे लग के जब तुमने उनको ऐसे सताया तो मेरी याद भुला दी, ये सजा है तुम्हारे लिए कि तुम जब किसी ईमान वाले अल्लाह के बंदे का मजाक करते हो, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये सजा होती है कि मजाक उड़ाने वाले को अल्लाह अपनी याद से महरूम कर देता है, और ये बड़ी खतरनाक चीज है। अहलुल्लाह का मजाक उड़ाना, अल्लाह वालों का मजाक उड़ाना, चाहे खुद इंसान नेकी की इतनी तौफीक ना भी पाए, मगर दीन वालों का मजाक कभी ना उड़ाए, इसलिए कि दीन का, दीन वाले का, दीन के इल्म का, इनके सोर्सेस का, किसी मदरसे का, किसी आलिम का, इनका मजाक उड़ाना क्या है, अल्लाह ताला अपनी याद से महरूम कर सकता है। यहां तक कि उन्होंने तुम्हें मेरी याद भुला दी, ये माना हुआ। और आज फ्री फॉर ऑल है, मौलवियों का मजाक उड़ाना, इनका मजाक उड़ाना, मदारिस का मजाक उड़ाना, जहन्नुम जन्नत का मजाक, उसके लतीफे बनाना, हूरों के ऊपर लतीफे बनाना। अशफाक अहमद एक जगह पे उन्होंने कहा था कि असल में बात यह है कि हमारा दिल तो करता है कि इस्लाम के खिलाफ बातें बनाएं, लेकिन वो हम कर नहीं सकते ना, तो मौलवी के खिलाफ बातें करते हैं, उस तरह से अपनी भड़ास निकालते हैं। इन्होंने ये आजकल निकाल लिया है, इन्होंने ऐसे बना दिया है, इन्होंने दीन को मुश्किल बनाया है, ये हर वक्त डराते रहते हैं, ये हर वक्त ही कहते रहते हैं। ठीक है, हालांकि वही चीजें आप कुरान पढ़ के देखिए, वो कुरान में है, लेकिन आप कुरान को तो कुछ नहीं कह सकते, तो उनके ऊपर नाम लगा देते हैं। इन्होंने हिजाब, इन्होंने ये, उन्होंने ऐसे, ये सारा इल्जाम उनके ऊपर कर देते हैं। तो असल में उनका भी मजाक उड़ाना क्या है, दीन का ही मजाक उड़ाना ना। कोई जो उनके लतीफे बनाते हैं उनका, या कोई अमल कर रहा है दीन के ऊपर उसका मजाक उड़ाना, ये यही चीज है कि अल्लाह के ये कामात का ही मजाक उड़ा रहे हैं। किसी की दाढ़ी का, हिजाब का, उसका, वो कोई कोशिश कर रहा है गुनाह से बचने के लिए, उसका मुल्लानी कह के, पता नहीं क्या क्या इस तरह के, और फनेटिक कह के, ये पता नहीं ऐसे इतने नाम दे दे के लोगों को, और उनकी उनको डिस्करेज करना। कुंतुम मिनहुम तदहकून, और तुम उनसे हंसा करते थे, उनकी उनके ऊपर हंसते थे, उनको सीरियस नहीं लेते थे, उनके ऊपर हंसते थे, नॉन सीरियस एटीट्यूड। हंसता इंसान उसी के ऊपर है जिसको हकीर समझता है ना, किसी को इज्जत दे रहा हो तो हंसता थोड़ी है उसके ऊपर। ये ना आज देखेंगे कितने कैसे हंसा जाता है, कैसे बातें बनाई जाती हैं, कैसे उनको हकीर समझा जाता है। एक कोई पर्दे में औरत आ जाए तो उसके ऊपर हंसने लगते हैं, एक दूसरे को आंखें में, आंखों आंखों में इशारे करने लगते हैं, आ गई है ये मुलानी। तो इन्नी जजई तो हमल यमो, कि बेशक मैंने जजा दी उनको आज के दिन, बीमा साबर, किस वजह से, कि उन्होंने सबर किया। वो मेरे बंदे हैं जिनका तुम तो मजाक उड़ाया करते थे ना, आज मैंने उनको अच्छा बदला दिया। क्यों? इसलिए कि वो सबर करते थे। सबर क्या था उनका, किस चीज के ऊपर सबर करते थे? कि दो तरह के लोग होते ना, एक तो वो लोग होते जो दूसरों के प्रेशर में आ जाते, हालात से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अल्लाह के हुक्मों को छोड़ देते हैं और कहते हैं बस अब मेरे से नहीं होता, अब मुझसे नहीं लोगों की बातें सुनी जाती, अब मैं नहीं ये बर्दाश्त कर सकती, अब मैं बस छोड़ रही हूं, मेरे मैं और मैं गिव अप कर रही हूं, मैं नहीं ये सुन सकती, लोग फलां मुझे बातें सुनाता है, मैं नहीं, मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता, मैं स्ट्रेस ले लेती हूँ फिर, तो इसलिए मैंने छोड़ ही दिया। ठीक है, ये कमजोर ईमान वाले लोग होते हैं कि मैं नहीं कर सकती। मगर दूसरे वो होते जो ला यखाफून लौमत लाइम, जो नहीं डरते मलामत करने वाले की मलामत से, अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान में, ये होते हैं जो सबर करने वाले लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जो मर्जी कोई कह रहा है, कर रहा है, मजाक कर रहा है, हमारे खिलाफ बातें कर रहा है, हमें अच्छा नहीं समझ रहा, हमें अपनी कंपनी में बैठने नहीं देता, ये इनकी परवाह नहीं करते हैं। ये कितने खुशकिस्मत लोग हैं, उस दिन इनको कहा जाएगा कि तुम्हारे सबर की वजह, ये भी एक सबर है ना, पेशेंस, बर्दाश्त करना और चलते रहना कन्विक्शन के साथ, जमे रहना चाहे कितनी बातें कोई करे। बाज दफा तो घर वाले ही बातें बनाना शुरू कर देते हैं, हस्बैंड बातें करते हैं, करीबी रिश्तेदार बातें बनाना शुरू हो जाते हैं, दोस्त तो खैर बनाए तो हम उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन बाज दफा बहुत करीबी लोग जिनको आप छोड़ भी नहीं सकते, उनसे बातें सुननी पड़ती हैं। तो ये वो हैं अहले ईमान के जो सबर करते रहे जिंदगी में, क्योंकि याद रखिए अल्लाह के दीन पे चलने के लिए सबर करना पड़ेगा, ये सबर का मरहला आता है हमेशा। बाज दफा आप ऐसे रस्म और रिवाज जो खानदान के हैं या जो माशरे के हैं उनको तोड़ते हैं कि नहीं हमने नहीं ये करना, हमने ये तीजा 40वें जुमेराते हैं ये वो हमने नहीं करनी, हमने ऐसे नाच गाने नहीं करने, हमने ये आपे से बाहर नहीं होना, तो लोग फिर मजाक करना शुरू हो जाते हैं, फिर लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं। उसमें उसके मुकाबले में क्या है, एक तो यही रवैया कि इंसान फिर छोड़ दे, कहीं हमसे नहीं बातें सुनी जाती, फिर कभी कर लूंगी, अभी तो मैं वही करूं ना जो सब चाहते हैं, ये कमजोरी है। और एक है जो सबर वाले, उनको मिलेगी उस दिन जजा, अन्नहुम हुमुल फाइजून, के बेशक वो है वो ही कामयाब होने वाले। फाइज जैसे हम कहते हैं ना, कि मैंने अभी आपको निजात बताया, फलाह बताया, एक फाइज है, जैसे आपको कहते हैं किसी ओहदे पे फाइज कर दिया उसको, तो फाइज का मतलब अब जन्नत में उसका वो जो मकाम है ना वो उसको दे दिया गया, उस पे फाइज कर दिया गया, पहुंच गया वो वहां, पहुंचा दिया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमारे लिए दीन पे चलना आसान कर दे, लेकिन जब सबर का मरहला आए तो अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत और ताकत दे कि हम किसी की भी परवाह ना करें और दीन पे जमे रहें। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये क्लासेस हैं, इनकी भी कई लोग मजाक उड़ाते हैं, देखो इनको तो बस कोई काम नहीं है, दर्स शुरू करने में ये हो गया, क्लासे लेती हैं, फलां करती हैं, इतनी ही बातें बनाएंगे, क्लासे लेती और तुम्हारा ये हाल है और तुम ऐसे करती हो, फिर बहुत तरह की चीजें कहेंगे। लेकिन आप कौन है जो जम जाए और कौन है जो भाग जाए? तो ये डटने वाले लोग हैं, इसी वजह से जन्नत में जा रहे हैं। तो जमना होगा, और भगोड़े जो होते हैं वो कहीं पे भी उनकी कदर नहीं होती। आप चाहे जॉब से भागने वाले हो, चाहे कॉलेज से आप पढ़ाई छोड़ के भाग जाए, क्या मिलता है आपको फिर? लेकिन ये लोग जम गए, भागने वालों का कहीं कोई मकाम नहीं, तो भागे नहीं और जम जाए। कोई कितना मजाक करे आप जमे रहे, या तो वो मजाक करना छोड़ देंगे या फिर वो आपको बुलाना छोड़ देंगे, कोई एक चीज तो होगी। अब जब वो सबर करते हैं ना, तो तब वो उस दर्जे के काबिल होते हैं जिस पे अल्लाह ने उनको फाइज करना था। मैंने आपको बताया ना, हर एक बंदे का एक मकाम है जन्नत में भी, अल्लाह ताला ने उसकी जगह रखी हुई है कि ये इसका दर्जा है। हाँ, बाज दफा हदीस में आता है वो अपना वो दर्जा पा नहीं सकता अपने अमल की वजह से, क्योंकि उसके अमाल इस काबिल ही नहीं होते कि वो वहां तक पहुंच सके, तो अल्लाह ताला उसको फिर किसी मुसीबत में मुबतला कर देता, किसी आजमाइश में डाल देता, वो उस मुसीबत में सबर करता है, ये भी एक सबर है। और जब वो सबर करता है तो फिर वो दर्जा पा लेता है जिस पर अल्लाह ताला ने उसको फाइज करना। तो सबर भी बहुत तरह का है ना, ये भी एक तरह का सबर है। अल्लाह ताला फिर उसको इस दर्जे के जब वो काबिल हो जाता है ना जिस पर अल्लाह ने उसको फाइज करना था, तब अल्लाह ताला उसको अपने पास बुला लेता है। सुभान अल्लाह, अब अल्लाह अपने पास बुला लेता है, अब ये उस काबिल हो गया। देखिए ना, जैसे आप किसी ओहदे के काबिल होते हैं तो आपको वो ओहदा मिलता है ना, अब उसको ओहदे के काबिल नहीं तो कैसे मिलेगा? तो अल्लाह ताला ये आजमाइश डाल के वो जन्नत के ऊंचे 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 दर्जात के लिए उसको काबिल बना देता है। वो लोग देख के उसको कहते हैं, हाय बेचारा, हाय बेचारी, हाय इसके ऊपर कितनी सख्तियां हैं, पता नहीं क्या वजह है। हालांकि अल्लाह ने उसको उसके काबिल बनाना है, वो जो ऊंचे दर्जे हैं। कभी अल्लाह ताला उसको किसी बीमारी में मुबतला कर देता है, कभी किसी और तरह की सख्ती आजमाइश में कर देता है। सुभान अल्लाह। कहा कम लबिस्तुम, वो कहते हैं कहा कितना रह ठहरे तुम, कितना ठहरे तुम जमीन में, आधा आधा सीनी है सालों के एतबार से कितना ठहरे। तो अब देखे साल उनसे पूछे जा रहे हैं, कालू, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं साल क्या। अब ये कौन उनसे पूछ रहा है? हो सकता है अल्लाह ताला पूछ रहा है, ये बताया नहीं गया। हो सकता है जहन्नमी पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि कितना तुम ठहरे। तो वो कहते हैं अलबिसना यौमन उबादा यौम, हम तो ठहरे एक दिन, साल पूछते हैं हम तो साल क्या, साल तो बहुत बड़ी बात है, हम तो एक दिन ठहरे सिर्फ, या दिन का कुछ हिस्सा। फसअलिल आदीन, आप बेशक पूछ लें, गिनने वालों से पूछ लो, कौन से गिनने वाले, किन का कह रहे हैं? या तो वो कह रहे हैं कि जो बड़े हिसाब किताब के माहिर थे, हमने तो हिसाब नहीं रखा, लेकिन उनसे पूछ लें, या फिर वो कह रहे हैं फरिश्तों से पूछ लें, इन्होंने जो इतना हमारे आमाल का हिसाब रखा हुआ था तो इसका भी हिसाब इनके पास होगा कि कितना हम ठहरे। लेकिन हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, यानी ये पूरी जिंदगी क्या लगेगी, दिन का कुछ हिस्सा। सुभान अल्लाह, ये बड़ा ही जबरदस्त अंदाज है। अल्लाह ताला ने कई दफा कुरान पाक में इस तरह फरमाया कि दुनिया की जिंदगी की हकीकत बताने के लिए हमें ये बताया कि ये देख लो, ये जिस दुनिया को तुम हर वक्त समझ रहे हो ना कि ये बहुत बड़ी चीज है, इसको तुमने उसके ऊपर अपनी आखरत को दाव पे लगा लिया, ये कितने दिन की है, यहाँ पे कितना दिन जियोगे, कब तक रहोगे, ये तो सोचो कि वहां जाके तुम्हें पता चलेगा आखरत में जाके कि ये दुनिया तो सिर्फ दिन का कुछ हिस्सा थी। और एक और जगह आता है एक ऐसे कि जैसे एक साल ठहरे हम, एक एक घंटा ठहरे हम, कितना थोड़ा टाइम है आखरत के मुकाबले में, तो वैसे ही बहुत थोड़ा। अब सोचे ना, खुद सोचे, आखिरत का सिर्फ कयामत का दिन 50,000 साल का है, 50,000 साल का। उसके मुकाबले में इस दुनिया की 100 साल की भी जिंदगी अगर मिल जाती है, जो बहुत ही कम किसी को मिल सकती, 100 साल की भी जिंदगी मिल जाए तो चंद सेकंड की होगी उसके मुकाबले में, ऐसा ही होगा ना, या चंद घंटे की, या एक पहर की। हाँ, तो चंद सेकंड, और जिसको 100 से भी कम मिले तो चंद सेकंड ही बने ना फिर। फॉर फ्यू सेकंड्स हम इतना घाटे का सौदा कर रहे हैं, इसीलिए तो अल्लाह ताला कयामत के दिन जब जन्नती वहां पहुंच जाएंगे ना अपनी जगह पर, तो अल्लाह ताला उनसे पूछेगा तुम दुनिया में कितनी मुद्दत रहे, तो वो कहेंगे बस यही कोई एक आध दिन। उनको भी छोटा ही लगेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ जहन्नमियों को, उनको भी छोटा लगेगा। तो अल्लाह ताला फरमाया कि तो तुम बड़े अच्छे रहे, इतनी सी देर में तुमने नेकियों का ये बदला पा लिया कि मेरी रहमत पा ली। और अल्लाह ताला फिर जहन्नमियों से सवाल करेगा तुम कितनी मुद्दत रहे, तो इससे पता चलता है अल्लाह ताला भी सवाल करे, तो वो कहेंगे हम बस इतनी सी देर के लिए रहे थे। अल्लाह ताला फरमाया तुम्हारी तिजारत तो बड़ी घाटे की थी, इतनी सी देर में तुमने मेरी इतनी नाराज की, इतना गुस्सा, और जहन्नुम खरीद लिया। मैंने आपको बताया ना, इंसान खुद खरीदता है, खुद खरीद रहा है, लेकिन वो कितना घाटे का। जैसे आप बाजार जाओ तो आप एक घटिया चीज उठा के ले आओ और कितने पैसे आप दे दें, तो आपको कितना गुस्सा आता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वो जिसने अपनी पूरी जिंदगी दे के, इतनी कीमती जिंदगी, इतने सारे चांसेस दे के, और उनको, इन चांसेस को जाया कर दिया, वो याद नहीं आएंगे इंसान को कि कितने सारे थे, जितने सारे मौके मुझे मिले थे। इसीलिए तो कहेगा रबिर जियो नहीं, मुझे तो मुझे वापस भेज दे। उसको सारे चांसेस नजर आएंगे, वो दिन, वो मौका, वो घट्टे, वो सब चीज मेरे पास था, और फिर भी जहन्नुम खरीद ली। जहां कहा जाएगा जहां तुम आप पढ़े रहोगे। ये तो ऐसे ही है ना कि जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको मैं पढ़ा के उसके बाद मैं आपको जो आपका टेस्ट आने वाला है ना, मैं आपको बता दूं कि जी ये आयतें आएंगी, आप इनकी तैयारी कर लें। पढ़ा भी दिया, समझा भी दिया, टेस्ट की आयतें भी, पेपर भी आउट कर दिया, सारी आयतें भी बता दी आपको, और उसके बाद भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो किसको इल्जाम देंगे? ये इंसान की वहां पे इतनी हसरत होगी, इतना वो अपने आप को मलामत करेगा, इतना वो अपने आप पे गुस्सा करेगा कि मैंने क्यों ऐसा किया। अल्लाहु अकबर। काला इल्ला बिस्तुम इल्ला कलीलन लव अन्नकुम कुंतुम तालमून। हाँ, कहा जाएगा हाँ तुम सही कहते हो। इन 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 नाफिया है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग इन नहीं का कलिमा, नहीं तुम ठहरे मगर वाकई तुम तो बहुत कम ठहरे। अगर तुम्हें पता हो, अगर तुम्हें इल्म हो कि ये दुनिया की जिंदगी तो बहुत छोटी थी, लेकिन कितनी बड़ी हमाकत है इंसान की कि इस छोटी के बदले, चंद दिन के बदले अपनी हमेशा की जिंदगी को गंवा दे। हम देखे ना, पता चला साल भी क्या, दुनिया में तो फौरन पता है कि साल में इतने साल की हो गई, इतने साल की हो गई हूँ, बर्थडे हो रही है, साल गुजरता नहीं हो तो मनाया जा रहा है इसको, तो वहां पे कहेंगे एक दिन भी नहीं रहे, दिन का भी कुछ हिस्सा, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं कब हमारी जिंदगी भी गुजर गई। तो इतना कलील ये उस वक्त समझ आएगी कि कितना कलील, जाहिर है चंद सेकंड तो कितना ही कलील होता है ना आखरत के मुकाबले में। लेकिन काश तुम्हें उस वक्त पता चल जाता, तो छोटे सी टाइम के लिए अपनी आखरत ना गंवाएं, इस छोटे से टाइम और दुनिया के बातों की वजह से, या दुनिया के कुछ कहने की वजह से, या उनके मजाक की वजह से, या उनमें इन होने के लिए, या दुनिया के किसी फायदे के लिए अपनी हमेशा की जिंदगी, हमेशा ये देखे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, मैं एक जगह पढ़ रही थी कि जो हमारे सब सालेहीन थे ना, वो अपने आप को कैसे तसल्ली दिया करते थे एक दूसरे के साथ। कहते थे जब भी कोई मसला आता था तो कहते थे, एक दूसरे को दिलासा देते थे कि चंद दिन की है दुनिया, और हमारी असल मुलाकात की जगह तो जन्नत है, वो ये कहते होते थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, यानी वो कहते थे ये तो चंद दिन की है ना। और वाकई जो इस दुनिया को ये इमाम अहमद ने लिखा है कि जो दुनिया को पहचान लेता है वो तो इससे बेरग़बत हो जाता है, जिसको पता चल जाए ना इसकी हकीकत क्या है, चंद दिन की है, वो जो उसका नहीं, इससे उसके अंदर बहुत अटैच नहीं होता, और जो आखरत को पहचान लेता है वो आखरत में रगबत और शौक रखता है, और जो अल्लाह ताला की तरफ रगबत रखता है तो हमेशा अल्लाह की रजा को तरजीह देता है। तो इसलिए हमें पता चला कि देखो ये इतनी टेम्पररी है, इतनी छोटी है, इसकी हकीकत को जो जान लेना, फिर उसको फिर इस नहीं यहाँ पे दिल लगता और ना वो यहाँ पे इतना अटैच होता है। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, आफा हसीब तुम अन्ना मा खलक ना को मा, तुमने ये समझा हुआ था हमने तुम्हें ऐसे ही भिखारी पैदा किया हुआ, अन्ना को मिले ना ला तुर जाओ ना, तुम्हें हमने वापस तुम्हारे पास नहीं आना इतनी मुख्तसर जिंदगी को, लेकिन ये ना समझे कि ये बेकार है, ये तवज्जो के लायक नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही हमें मिल गई है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हकीर है। नहीं, ये वो जिंदगी है जिससे हमने अपनी आखरत बनानी, ये चंद सेकंड की जिंदगी में, जैसे कोई किसी को कह देना आपको स्टोर में भेज रहे हैं आपके पास 1 घंटा, 1 घंटे में आप जो लेना चाहे यहाँ से मुफ्त ले सकते हैं, तो आप भागेंगे और अपनी ट्रॉली के अंदर सबसे महंगी चीज डालने की कोशिश करेंगे, कोई भी सस्ती चीजें नहीं डालेगा, कहेगा 1 घंटा गुजर जाएगा, 1 घंटा में सारे स्टोर में से महंगी महंगी चीजें। इसी तरह जो मोमिन होता है वो इस थोड़ी सी जिंदगी के अंदर जो महंगे महंगे यानी जो बड़े कदरों कीमत वाले सवाब में बहुत ज्यादा वाले अमल है उनको जोड़ता है, यानी कि लाभ के अंदर ही वक्त गुजारते, वो उठा के वो देखें वो $1 की वो एक कैंडी उठा के अपनी ट्रॉली में नहीं रखेगा, एक कैंडी क्या है, एक चंद सेंट की चीज है, इसको मैंने क्या करना है, क्या फायदा है इसका, वो ना महंगी चीजें उठाएगा। इस तरह ये देखो हमें कितनी अकल है इसमें, लेकिन जिंदगी में हम बेकार चीजें, फजूल चीजें, वो जो सस्ती चीजें, नाकारा चीजें, वो सारे अपनी ट्रॉली में डाल रहे हैं, वो 1 घंटा खत्म हो जाएगा, ट्रॉली में क्या गंद भरा होगा या सस्ती चीजें पड़ी होंगी, तो वहां पे तो जो आप महंगी चीजें भी वहां के लिए जमा कर सकते ताकि उसकी कीमत लगे। तो वो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुमने सोचा था ऐसे ही बेकार तुम्हें पैदा किया, और तुमने वापस नहीं आना, तुम इस गुमान में थे, तुम इसी ख्यालों में रह गए। अल्लाह अकबर, कितनी जबरदस्त ये आयते हैं ना, कितनी जबरदस्त है कि ये कैसे हमें गफलत से जगाती हैं, हमें आगे बढ़ने की तरगीब देती हैं, हमें इस दुनिया की हकीकत बता देती हैं, जो पर्दा खुलना है ना वहां जाके आंखों के आगे से उठना है, वो यहाँ पे अल्लाह ताला इस पर्दे को उठा देता है कि ये देखो ये क्या है, ये जिंदगी क्या है, और ये इसका धोखा क्या है, किया है तूने मताए गरूर का सौदा, ये धोखे का सौदा है जो तुम कर रहे हो और उस पे मुतमईन बैठे हुए और धोखे में अपने आप को रखा हुआ। अल्लाह अकबर, तो फतआलल्लाहुल्मलिक, तो बुलंद है वो रब जो बादशाह है, अल हक वो बरहक है, ला इलाहा इल्लाहू उसके सिवा कोई इलाह नहीं, रब्बुल अर्शिल करीम, अर्शे करीम का रब है, वो खुद भी करीम है और रब है अर्शे करीम का, अर्श की सिफत अगर करीम ले तो मतलब क्या है, करीम क्या होता है, इज्जत वाला, जो दूसरे पर करम करने वाला, उसके अर्श से भी हर वक्त रहमतों का नजूल हो रहा है, करम का नजूल हो रहा है, नेमतों का नजूल हो रहा है, वो उसका भी रब है। वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, जिसने भी पुकारा अल्लाह के साथ, मिन दूनिल्लाह नहीं, अल्लाह के साथ, यानी वो अल्लाह को भी पुकारता है और उसके साथ औरों को भी पुकारता है, इलाहन आखर को भी पुकारता है, किसी दूसरे इलाह को भी पुकारता है, अल्लाह भी है लेकिन कोई और भी है, ठीक है, तो ला बुरहान लहू भी, तो उसके पास उसकी कोई बुरहान नहीं है, कोई दलील नहीं है, इसकी कोई एविडेंस नहीं है, ना इस कायनात में, ना नबियों ने ऐसी कोई बात बताई, ना अल्लाह की तरफ से जो वही उतरी उसमें है, फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बी, तो बात ही खत्म हो गई, सारी बातों की इतना समझा लिया ना, इस समझाने के बाद भी नहीं समझ आई तो ठीक है कोई बात नहीं, हिसाब अल्लाह के पास है इनका, फिर इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, फिर काफिर फला नहीं पा सकते, वो नहीं फला पाएंगे, वो कामयाब नहीं होंगे। अब शुरू में बता दिया कद अफलहल मुमिनून, आखिर में बता दिया ला युफ्लिहुल काफिरून, समझ आ गई बात, किसने कौन है जो कामयाब हो जाएगा और कौन है जो उस दिन कामयाबी नहीं पा सकेगा, दोनों बता दिए, स्टार्ट कामयाबी का नुस्खा और एंड कौन से कामयाब नहीं होंगे, फिर भी इतना पेपर आउट होने के बावजूद भी कोई समझे ना तो फिर उसकी मर्जी, फिर वो अपने आप को मलामत करे, वकुर रब्बे गफिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, और कह दीजिए ए मेरे रब मुझे बख्श दे, मेरे ऊपर रहम फरमा दे। और रहम करने वालों में तू बेहतरीन रहम करने वाला है, क्योंकि अल्लाह की रहमत के बगैर तो ना कामयाबी मिल सकती है, ना इंसान पास हो सकता है, ना जन्नत मिल सकती है, ना हिसाब आसान हो सकता है। तो अल्लाह हमें बख्श देना, अल्लाह हम पे रहम कर देना, ये दुआ करते रहना चाहिए, ये दुआ याद कर लेनी चाहिए। और उठते बैठते भी अगर हम कहते रहे रब्बे फिर वरहम, रब्बे फिर, रब्बे फिर वरहम, रब्बे फिर वरहम, रब्बे फिर वरहम, तो ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, ऐ मेरे रब मेरे पे रहम फरमा, अंता खैरुर राहिमीन, और तू बेहतरीन है रहम करने वालों में, तेरे जैसा रहम थोड़ी कोई कर सकता है। अल्लाह कोई रहम करे भी तो कितना रहम कर सकता है, और तू सारे रहम करने वालों में सबसे अच्छा रहम करने वाला है। अल्लाह ताला हम भी तेरे से तेरा रहम मांगते हैं, तेरी रहमत और तेरी बख्शिश मांगते हैं। अल्लाह ताला तू हम सबको भी माफ फरमा दे और हम पर रहम फरमाना। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون حتى إذا فتحنا عليهم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله.